بسم اللہ الرحمن الرحیم. استفتاح. سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 12 میں موجود ہے. 12 مئی 1897 کو یہ کتاب تصنیف ہوئی. اس کے لکھنے کی غرض آریہ قوم کی اس افتراء پردازی کا جواب دینا تھا کہ لکھ رام نعوذ باللہ آپ کی سازش سے قتل ہوا ہے. اس رسالے میں پیشگوئی متعلقہ لیکھ رام پر مفصل بحث کی گئی ہے، اور اس پیشگوئی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال کر اہل رائے اور اہل نظر اصحاب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ الہامات کو پڑھ کر یہ گواہی دیں کہ جو پیشگوئی لیکھ رام کی موت کے بارے میں کی گئی تھی وہ واقعی طور پر پوری ہوئی یا نہیں. اس رسالے کے پڑھنے سے ہر منصف مزاج انسان کو یہ یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت خدا تعالی موجود ہے، اور وہ قبل از وقت اپنے خاص بندوں پر غیب کی باتیں ظاہر کیا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 107. استفتاح. لا تکتم الشہادتا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل بدکار ہے. اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. صاحب من، میں اس چٹھی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ایک رسالہ بھیجتا ہوں جس کا نام استفتاح ہے. اس رسالے کے لکھنے کی ضرورت یہ ہوئی ہے کہ آریہ قوم نے حد سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ لیکھ رام اس شخص یعنی اس راکم کی سازش سے قتل ہوا ہے، اور میری دانست میں وہ کسی قدر معذور بھی ہیں کیونکہ الہامی پیشگوئیوں کے فوق العادت طریق سے بالکل بے خبر ہیں. وجہ یہ کہ ان کے عقیدے کی روح سے ہزارہا برس سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے، اور خدا کا کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے. اس لیے وہ کسی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی طرف سے ایسی پیشگوئیاں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال ہمارے ہاتھ میں جو اپنی بریت کے وجوہ ہیں ان کا بیان کر دینا نہ صرف لیکھ رام کے حامیوں کے شبہات کو مٹانا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے معلومات کو بھی وسیع کرتا ہے جو اس زمانے میں کسی الہامی پیشگوئی کے نفس مفہوم پر بھی اعتراض رکھتے ہیں. اور غیب کی باتوں کو قبل از وقت بیان کرنا قانون قدرت کے خلاف خیال کرتے ہیں. غالباً یہ رسالہ ان لوگوں کے لیے بھی دلچسپ اور موجب زیادت علم ہوگا جو دلی شوق کے ساتھ اس بات کی تفتیش میں ہیں کہ کیا خدا حقیقت میں موجود ہے، اور کیا وہ قبل از وقت کسی پر غیب کی باتیں ظاہر کر سکتا ہے. اسی غرض سے اس رسالے میں تمام ایسے وجوہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو بخوبی ثابت کرتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جو لیکھ رام کے بارے میں کی گئی تھی وہ واقعی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ وہ انسان کا منصوبہ ہو یا انسان اس پر قادر ہو سکے. اور اس بات کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اس پیشگوئی کی درخواست لیکھ رام نے خود کی تھی، اور اس کو اسلام اور آریہ مذہب کے امتحان صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا، اور پھر بعد اس کے فریقین کی باہمی رضامندی سے دونوں فریق نے بڑے زور سے اس پیشگوئی کو شائع کیا تھا. اور جس طرح پہلوانوں کی کشتی ہوتی ہے، اسی طرح دونوں گروہ کا اس پیشگوئی پر خیال لگا ہوا تھا. آخر بڑی صفائی سے یہ پوری ہوئی. اس پیشگوئی میں ایک بات نہایت عجیب ہے جس کو میں نے زبردست دلائل کے ساتھ اس رسالے میں بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی مارچ 1897 کے مہینے سے، جس میں لیکھ رام قتل ہوا ہے، 17 برس پہلے ہماری کتاب براہین احمدیہ کے ایک الہام میں بڑی صفائی سے ذکر کی گئی ہے. اور براہین کی تعریف کا وہ زمانہ تھا کہ شاید اس وقت لیکھ رام 12 یا 13 برس کا ہوگا. یہی وہ بات ہے جس کو خوب غور سے سوچنا چاہیے، اور یہی وہ امر ہے جس سے معرفت کی ترقی ہوگی، اور خدا کے فعل اور انسان کے فعل میں کھلا کھلا فرق دکھائی دے گا، اور دل میں سکینت اور اطمینان پیدا ہو جائیں گے. اور غالباً اس جگہ اس بات کا بیان کرنا بھی مفید ہوگا کہ میں نے ابھی تک ایک دوسرے رسالے میں، جس کا نام سراج منیر ہے، अपनी बरियत और सच्चाई साबित करने के लिए एक और सिलसिला गवाह की तरह पेश किया है, और वो ये है कि मैंने वो तमाम पेशगोइयां जो लेख राम के मरने से पहले पूरी हो चुकी थी रिसाला मजकूरा में जमा करके लिख दी हैं और नहायत लतीफ तौर पर उनका निजाम दिखलाया है। इन पेशगोइयों के बाद ऐसे आर्या भी गवाह हैं जिनके बारे में ये पेशगोइयां की गई थी, सो मेरे नजदीक बेहतर होगा कि जो साहिब अपनी राय लिखने के वक्त सिराज मुनीर का देखना मुनासिब समझें वो मुझसे तलब करें, मैं वो रसाला उनकी खिदमत में रवाना कर दूंगा। और ये बात भी बयान कर देने के काबिल है कि जैसा कि आर्यों को इस पेशगोई के बारे में नाहक के शुबहात हैं जिनकी वजह बजुज इसके कुछ नहीं कि पेशगोई की अजमत ने उनको हैरत में डाल दिया है, ऐसा ही हमारे मुखालिफ मौलवी भी जो रूहानियत से बेबहरा हैं इसी गर्दाब में पड़े हुए हैं, सो उनके लिए भी ये रिसाला मुफीद होगा बशर्ते कि वो गौर से पढ़ें। और ये रिसाला इस चिट्ठी के जरिया से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि आप रिसाले के वजूहात पेशकर्दा पर गौर करके अपने दिली इंसाफ के तकाजे से वो फतवा लिखें जिसका लिखना वजूहात मारूजा की रूह से वाजिब हो, यानी ये कि लेख राम के मरने की निस्बत जो पेशगोई की गई थी क्या वो फिलवाकिया पूरी हो गई या नहीं, और क्या वो इस आला दर्जा फौकुल आदत पर है या नहीं जिसकी निस्बत वसूख के साथ कह सकते हैं कि ना वो इंसानी मनसूबा है और ना इत्तेफाकी अमर है बल्कि खुदा ताला का वो खास फेल है जिसको इल्हामी पेशगोई कहना चाहिए। वस्सलामु अला मन तबाल हुदा। राकिम गुलाम अहमद कादियानी, 8 ज़िलहज्जा 1314 हिजरी। मुकर्रर आंके जो साहिब बगर्ज तस्दीक निशान लेख राम वाली पेशगोई के अपनी गवाही नक्शा मुंसलिका पर करना ना चाहें उन्हें लाजिम होगा कि ये रसाला इस्तिफ्ता मैं इस चिट्ठी के वापस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इस्तिफ्ता, क्या फरमाते हैं बुजुर्गाने अहलु नज़र व अहलु राय कि ये इल्हामी शहादतें जो ज़ैल में लिखी जाती हैं उन पर नजर डालने से इत्मीनान के लायक ये नतीजा निकलता है या नहीं कि जो पेशगोई लेख राम की मौत की निस्बत की गई थी वो वाकई तौर पर पूरी हो गई? अगर उनकी राय में पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ नीचे लिखी हुई पेशगोई से जो बतौर वसीका शहादत हैं कमाल सफाई से ये बात साबित होती है कि वो तहरीरें इंसानी अटकलों और मनसूबों से बरतर और फौकुल आदत हैं, तो महज लिल्लाह सच्चाई की मदद के लिए जो जवान मर्दों और बहादुरों और खुदा तर्स बंदों का काम है बगर्ज तस्दीक इस मजमून के ज़ैल में अपनी गवाही सबत करें। मुझे यकीन है कि खुदा ताला उनको इस सच्ची गवाही का अजर देगा और दुनिया और दीन की आफियत और कामयाबी से कामिल हिस्सा अता फरमाएगा, वरना शहादत हक्का के छुपाने के जो बुरे नतायज हैं उनका जहूर भी कानून इलाही के रूह से लाजमी है। लेकिन अगर किसी के नजदीक मुंदरजा ज़ैल इल्हामी शहादतें इत्मीनान के लायक नहीं बल्कि उनके ख्याल में दरअसल इंसानी मनसूबा था जो इल्हामी पेशगोई के नाम से मुश्तहर किया गया जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिर उसी पुख्ता साजिश की वजह से लेख राम 6 मार्च 1897 को बमुकाम लाहौर मारा गया, तो उसे इख्तियार है कि इस कागज पर अपनी गवाही सब्त न करे और मुझे कातलों में से शुमार करता रहे। लेकिन अगर उसके नजदीक ये इल्हामी शहादतें वजन के काबिल हैं जिनसे हम फायदा उठाने के मुस्तहिक हैं तो दीनी हमदर्दी का इस वक्त हम कोई मुतालबा नहीं करते मगर इंसानी हमदर्दी, और वो भी ठीक ठीक इंसाफ की रूह से जिस कदर कानून हमें हक बख्शता है उसको हम अदब के साथ अहल राय से बतौर इस्तिफ्ता मांगते हैं। हम इस इस्तिफ्ता के जरिया से अहले नजर से क्या चाहते हैं? बस यही कि जो कुछ हम एक मुरतब और मुकम्मल सिलसिला पेशगोइयों का लेख राम की मौत के बारे में उनके सामने रखते हैं वो इस पर पूरी तवज्जो के साथ फतवा के तौर पर राय लिखें और अपने पाक कॉन्शियंस के जोश से शहादत दें कि क्या अकल और दयानत वाजिब नहीं ठहराती कि इस इल्हामी सिलसिला के फौकुल आदत बयान को खुदा ताला की तरफ से मंसूब किया जाए, और क्या एक अकलमंद के जहन में आ सकता है कि पेशगोई की ये तमाम शाखें जो बशरी ताकतों से बढ़कर हैं झूठ की ताइद में एक दफा फूट पड़े? इस वक्त ये बयान करना जरूरी है कि आर्या साहबों के हाथ में इस पेशगोई की तकदीब के लिए जो कुछ है वो इससे ज्यादा नहीं कि उन्होंने बजाय इसके कि खुदा के अजीब कामों पर गौर करते ये तरीक इख्तियार किया है कि बदजन्नी की वजह से इंसानी मनसूबों के एहतमाल को वो दर्जा दिया है जो खुदाए कादिर के कामों से मखसूस है। चूंकि ये पेशगोई 4 वर्ष से कुछ ज्यादा की थी और कई मजलसों की तकरीरों और नीज तहरीरों से हिंदुओं तक ये बात पहुंच गई थी कि पेशगोई में ये लिखा गया है कि हैबतनाक तौर पर लेखराम की जिंदगी का खात्मा होगा और नीज ये कि ईद के दिनों में उसकी वफात होगी और 6 साल के अंदर होगी और पेशगोई अपने सरी लफ्जों में वाकया कत्ल की तरफ इशारा करती थी। इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत बाहर समझा कि खुदा ताला की तरफ से कोई पेशगोई ऐसे सरीह पतों और निशानों के साथ हो, मगर इस बात को करीने की आस ख्याल न किया कि कबल अज वक्त ये तमाम गैब की बातें कोई इंसान अपने मुंह से निकाले और फिर वैसी ही पूरी करके दिखला देवे। लिहाजा उन्होंने इस इल्हामी पेशगोई को इंसानी मनसूबे पर हमल कर लिया और बड़े इसरार से बार बार अखबारों में छापा कि ऐसी सफाई से पेशगोई करना और ऐसे खुले खुले और बेहिजाब तरीक से तारीख और दिन और सूरत मौत को कबल अज वक्त बयान करना खुदा का कानून नहीं, बल्कि सच ये है कि यही शख्स यानी ये राकिम लेखराम का कातिल है और ये पेशगोई अमीक साजिशों और मुद्दत की सोची हुई तदबीरों का नतीजा है। इसी बिना पर उन्होंने बाहमी इत्तेफाक के साथ इस राकिम को मुल्जम बनाने के लिए जोर दिया और इस ख्याल के इजहार में अखबारों के कालम से आकर डाले और गवर्नमेंट में मुखबरियां की, यहां तक कि 8 अप्रैल 1897 को बरोज पंचशंबा अंग्रेजी अफसरों ने कादियान में आकर मेरे घर की तलाशी ली। तलाशी के वक्त में खतूत दस्तखती पंडित लेखराम बरामद हुए और नीज वो मुआदे का कागज भी निकल आया जिसमें आसमानी निशानों के दिखलाने के बारे में शर्तें कायम होकर दोनों फरीक की रजामंदी से सच्ची पेशगोई को मियारे सिद्क को किस ठहराया गया था। चुनाचे साहिब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस के हुजूर में वो कागज पढ़ा गया जिसका ये मजमून था कि जो पेशगोई लेखराम के हाथ में की जाएगी वो दीने इस्लाम और आर्या मजहब में एक फैसला नातिक होगी। अगर पेशगोई सच्ची निकली तो वो दीने इस्लाम की सच्चाई की गवाह होगी और हिंदू मजहब के बुतलान पर दलील ठहरेगी, और अगर झूठी निकली तो वो हिंदू मजहब की सच्चाई पर गवाह होगी और नाउज बिल्ला दीने इस्लाम के बुतलान पर दलालत करेगी। और ये शर्त पंडित लेखराम ने अपने इसरार से लिखवाई थी और चूंकि मुझे खुदा ताला के वादों पर वसूख था इसलिए मैंने भी उसको कबूल कर लिया था। अब वो मुश्किल जिसके लिए इस इस्तिफ्ता की जरूरत पड़ी सिर्फ इसी कदर नहीं कि आर्या साहबों ने इस राकम पर खुफिया साजिश का इल्जाम लगाया, बल्कि हमारी कौम के बाद बुजुर्ग लोगों ने भी उनसे इत्तेफाक कर लिया और ये चाहा कि ऐसी अजीम शान पेशगोई जिसकी तकजीब का नतीजा मुआहदे के कागजात के रूह से इस्लाम की तकजीब है किसी तरह बातिल ठहराई जाए। चुनाचे मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी एडिटर इशात सुन्ना और ऐसा ही बाज चंद और मौलवियों ने आम तौर पर यह राय शाया कर दी है कि यह पेशगोई झूठी निकली। चुनाचे उन्होंने एक खत मेरी तरफ भी भेज दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी नेक नीति से यह फैसला किया है कि पेशगोई पूरी नहीं हुई, यानी लेखराम की मौत सिर्फ एक इत्तेफाकी अमर था जिसमें खुदा का कुछ दखल नहीं, और इस बात पर जोर दिया कि क्यों यह अमर साबित शुदा मान लिया जाए कि पेशगोई सच्ची हुई और क्यों यह कबूल ना किया जाए कि यह एक इत्तेफाकी मौत है जो पेशगोई के जमाने में वकूअ में आ गई।